एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार। आज हम जिनकी जिंदगी और सार्वजनिक सेवा की एक लंबी यात्रा को समझने जा रहे हैं वो हैं डॉक्टर एंथनी फाउची
जी,
और हमारी इस चर्चा का आधार है उनका हाल ही में आया संस्मरण ऑन कॉल, अ डॉक्टर्स जर्नी इन पब्लिक सर्विस। डॉक्टर फाउची वो एक अमेरिकी चिकित्सक वैज्ञानिक हैं, इम्यूनोलॉजिस्ट हैं। शायद हाल के सालों में लोग उन्हें कोविड-19 के समय काफी पहचाने लगे।
हाँ बिल्कुल, वो चेहरा बन गए थे एक तरह से।
हाँ, लेकिन उनका जो काम है, उनका करियर है, वो इससे कई ज्यादा मतलब विस्तृत और प्रभावशाली रहा है।
सही बात है।
उन्होंने लगभग सोचिए 4 दशकों तक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज यानी NIAID
हाँ, जो अमेरिका की संक्रामक रोगों पर शोध करने वाली मुख्य संस्था है, उसका नेतृत्व किया और 7 अमेरिकी राष्ट्रपतियों के सलाहकार भी रहे।
जी हाँ, 7 राष्ट्रपति, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और देखिए, उनकी कहानी सिर्फ एक वैज्ञानिक की उपलब्धि की कहानी नहीं है, ये असल में विज्ञान, राजनीति और जो पब्लिक हेल्थ है और साथ में व्यक्तिगत ईमानदारी, इनके बीच का जो एक तनाव भरा रिश्ता होता है ना,
हाँ, वो खींचतान जो होती है।
हाँ बिल्कुल, उसकी कहानी है। अब सोचिए HIV/AIDS के वो शुरुआती दिन जब कितना डर था, कुछ पता नहीं था, वहां से लेके कोविड-19 का जो ये वैश्विक संकट आया, डॉक्टर फाउची अमेरिका की सबसे मुश्किल स्वास्थ्य चुनौतियों के बिल्कुल केंद्र में रहे हैं।
सही।
और ऐसे समय में जब आजकल हम देखते हैं कि वैज्ञानिक सलाह पर कितने सवाल उठते हैं, समाज में इतना ध्रुवीकरण है,
हाँ बिल्कुल,
तो उनकी यात्रा हमें ये समझने में मदद करती है कि भाई वैज्ञानिक सच्चाई और जो पब्लिक सर्विस की आपकी प्रतिबद्धता है उस पर कैसे टिका रहा जा सकता है, खासकर जब हालात बहुत मुश्किल हों।
तो चलिए इस सफर को थोड़ा शुरू से देखते हैं। डॉक्टर फाउची का जन्म ये 1940 में न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में हुआ था, एक इटालियन अमेरिकन परिवार में। उनके पिता फार्मासिस्ट थे और उनकी फार्मेसी घर के नीचे ही थी, तो इस माहौल का उन पर काफी असर पड़ा होगा।
हाँ, बहुत गहरा असर पड़ा। उन्होंने अपनी किताब में जिक्र भी किया है कि कैसे वो बचपन में देखते थे कि उनके पिता लोगों की मदद कर रहे हैं, उन्हें सलाह दे रहे हैं।
अच्छा,
तो वो विज्ञान और सेवा का मतलब एक मानवीय पहलू का उनका पहला सीधा अनुभव था।
और वो साइकिल पर नुस्खे पहुंचाने वाली बात भी शायद जिम्मेदारी सिखाती होगी।
बिल्कुल, बचपन से ही वो जिम्मेदारी का एहसास। और देखिए, वो फार्मासिस्ट सिर्फ दुकान नहीं थी, वो एक तरह से कम्युनिटी सेंटर जैसी थी।
हाँ,
जहां उन्होंने लोगों की जरूरतें और विज्ञान असल जिंदगी में कैसे काम होता है उसे बहुत करीब से देखा।
और उनकी शिक्षा वो जेसुइट संस्थानों में हुई है ना?
हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। रेजिस हाई स्कूल, फिर कॉलेज ऑफ द होली क्रॉस, यहाँ उन्हें सिर्फ किताबी ज्ञान या बौद्धिक कठोरता ही नहीं मिली।
अच्छा,
बल्कि वो दूसरों के लिए पुरुष या मेन फॉर अदर्स का जो सिद्धांत है।
हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में।
हाँ, वो सिद्धांत उन्हें मिला और वो कहते हैं कि ये उनके पूरे करियर में एक गाइड की तरह रहा। और खेल भी, वो बास्केटबॉल टीम के कप्तान थे।
अच्छा।
हाँ, तो वहां से टीम वर्क सीखा, दबाव में कैसे काम करना है ये सब सीखा।
उनकी अकादमिक यात्रा भी काफी प्रभावशाली रही। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज से 1966 में वो अपनी क्लास में फर्स्ट आए।
जी।
और यहीं इम्यून सिस्टम में उनकी रुचि जगी। फिर 1968 में वो NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ से जुड़ गए।
हाँ, अमेरिका का जो मुख्य बायोमेडिकल रिसर्च संस्थान है।
जी, उनके मेंटर थे शेल्डन वुल्फ, जिन्होंने उन्हें क्लिनिकल रिसर्च की तरफ मोड़ा, पर ऐसा कहा जाता है कि वो सिर्फ लैब में ही नहीं रहना चाहते थे।
बिल्कुल सही, ये उनके करियर के शुरू से ही साफ था। वो मानते थे कि लैब में जो खोज हो रही है उसका सीधा फायदा मरीजों तक पहुंचना चाहिए। और उनकी जो शुरुआती सफलता थी वो इसी सोच का नतीजा थी। उन्होंने कुछ दुर्लभ लेकिन बहुत घातक ऑटो इम्यून बीमारियां थी, जैसे वेगनर ग्रैनुलोमेटोसिस।
हाँ, ये काफी गंभीर बीमारियां होती हैं।
बहुत गंभीर, जिनमें शरीर का अपना इम्यून सिस्टम ही शरीर पर हमला करने लगता है। तो फाउची और उनकी टीम ने ऐसी दवाएं विकसित की जिनसे ये जानलेवा बीमारियां मतलब प्रबंधनीय स्थिति में आ गईं।
अच्छा,
तो इससे उन्होंने सीखा कि जो ठोस विज्ञान है और मरीज के लिए जो एक गहरी करुणा है वो मिलकर वाकई जीवन बचा सकती है।
और NIH में उनकी तरक्की भी तेज हुई। पहले इम्यूनो रेगुलेशन लैब के प्रमुख बने और फिर 1984 में सिर्फ 44 साल की उम्र में NIAID के निदेशक बन गए।
जी, 44 साल की उम्र में, और उस पद पर वो अगले 38 साल तक रहे।
38 साल, कमाल है। लेकिन शायद उनके करियर का सबसे बड़ा मोड़ तो इससे कुछ साल पहले ही आ गया था।
हाँ बिल्कुल, 1981 में, जब अमेरिका में खासकर समलैंगिक पुरुषों में एक बहुत ही रहस्यमयी और जानलेवा बीमारी के मामले सामने आने लगे,
एड्स।
हाँ, जिसे बाद में एड्स नाम दिया गया। उस वक्त मतलब बहुत कम जानकारी थी इस बीमारी के बारे में और डर बहुत था, सामाजिक कलंक भी बहुत जुड़ा हुआ था।
हाँ, वो दौर याद है।
तो कई जो स्थापित शोधकर्ता थे वो इस अनजान क्षेत्र में जाने से मतलब हिचक रहे थे, लेकिन डॉक्टर फाउची ने इसे एक बहुत बड़े उभरते हुए ऐतिहासिक संकट के रूप में देखा और उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया।
क्या?
उन्होंने अपनी लैब का पूरा ध्यान, जो उस वक्त दूसरी इम्यून बीमारियों पर काम कर रही थी, उसे हटाकर इस नई रहस्यमयी बीमारी पर लगा दिया।
ये तो बहुत बड़ा जोखिम रहा होगा।
हाँ, ये बहुत जोखिम भरा कदम था, लेकिन उन्हें लगा कि ये उनकी नैतिक और वैज्ञानिक दोनों तरह की जिम्मेदारी है।
और इसी फैसले ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है ना?
हाँ बिल्कुल, एड्स संकट ने उन्हें सिर्फ एक वैज्ञानिक या संस्थान के निदेशक से कहीं ज्यादा बना दिया, उन्हें एक साथ कई मोर्चों पर लड़ना पड़ा।
जैसे?
एक तो वायरस को समझने की वैज्ञानिक दौड़ थी, फिर इलाज खोजने की चुनौती, समाज का, राजनीति का विरोध झेलना पड़ा, और सबसे बढ़कर जो मरीज थे, उनके परिवार थे, उनकी जो मानवीय त्रासदी थी, उससे भी जूझना पड़ा।
और इसी दौर में उनका सामना उन एक्टिविस्ट से भी हुआ जो काफी मुखर थे, जैसे लैरी क्रेमर।
हाँ, लैरी क्रेमर और दूसरे एड्स एक्टिविस्ट। वो NIH और सरकार पर आरोप लगा रहे थे कि प्रतिक्रिया बहुत धीमी है, नौकरशाही हावी है।
टकराव तो हुआ होगा फिर?
बहुत तीखा टकराव हुआ शुरुआत में। क्रेमर ने तो सार्वजनिक तौर पर फाउची को हत्यारा तक कह दिया था।
बाप रे।
हाँ, लेकिन फाउची ने इसे व्यक्तिगत हमले की तरह नहीं लिया। उन्होंने कुछ अलग किया। उन्होंने इन कार्यकर्ताओं से मिलना शुरू किया, उनकी बात सुनना शुरू किया।
ये सुनना तो अच्छा लग रहा है, पर क्या ये सिर्फ मतलब आलोचना को शांत करने का तरीका था या इससे वाकई कुछ बदला?
ये बहुत अहम सवाल है, और फाउची के संस्मरण के हिसाब से देखें तो ये सिर्फ रणनीति नहीं थी। उन्होंने क्रेमर और बाकी कार्यकर्ताओं के गुस्से के पीछे जो हताशा थी, जो एक अर्जेंसी थी, उसको समझा।
अच्छा।
उन्हें ये एहसास हुआ कि जिन लोगों की जिंदगी दांव पर लगी है, उन्हें आप सिर्फ रिसर्च का सब्जेक्ट नहीं मान सकते, उन्हें प्रक्रिया में भागीदार बनाना होगा।
तो क्या किया उन्होंने?
नतीजा ये हुआ कि उन्होंने NIH की बैठकों में एड्स कार्यकर्ताओं को शामिल करना शुरू कर दिया। अब सोचिए, उस समय के लिए ये कितना क्रांतिकारी कदम था।
हाँ बिल्कुल।
इसने न सिर्फ क्लिनिकल ट्रायल कैसे डिजाइन होते हैं उस तरीके को बदला, बल्कि जो पेशेंट एडवोकेसी है, यानी मरीजों की वकालत का जो पूरा क्षेत्र है, उसको मजबूती दी। तो फाउची ने सीखा कि बाहरी आलोचना, चाहे कितनी भी तीखी क्यों ना हो, वो असल में बेहतर विज्ञान और ज्यादा मानवीय नतीजों की ओर ले जा सकती है।
और इसी सहयोग से फिर एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के विकास में भी मदद मिली।
हाँ बिल्कुल, इसी सहयोगात्मक रवैये ने उन दवाओं के विकास में तेजी लाने में मदद की जिन्होंने HIV को एक लाइलाज बीमारी से एक मैनेजेबल, मतलब एक प्रबंधनीय, पुरानी स्थिति में बदल दिया।
एड्स के बाद भी ये सिलसिला रुका नहीं, एक के बाद एक संकट आते रहे। 2001 के एंथ्रैक्स हमले।
हाँ, एंथ्रैक्स।
फिर SARS, H1N1 स्वाइन फ्लू, MERS, इबोला, जीका। ऐसा लगता है हर कुछ साल में एक नई चुनौती।
हाँ बिल्कुल, और हर संकट ने उन्हें और उनकी टीम को कुछ नया सिखाया। जैसे 2001 में 9/11 के तुरंत बाद जो एंथ्रैक्स हमले हुए,
हाँ,
उसने दिखाया कि बायो टेररिज्म, यानी जैविक आतंकवाद का खतरा कितना असली है और उसके लिए तैयारी कैसे करनी है। उसने सिखाया कि तेजी से निदान, इलाज और खासकर पब्लिक कम्युनिकेशन कितना जरूरी है जब डर और अनिश्चितता का माहौल हो।
और इबोला वाला वो उदाहरण भी दिलचस्प है।
हाँ, 2014 का इबोला संकट, जब अमेरिका में कुछ मामले आए तो काफी डर फैल गया था। उस समय नर्स नीना फार्म थी जो इबोला से संक्रमित हुई थी और फिर ठीक हो गई। तो जब वो ठीक हुई, डॉक्टर फाउची ने उन्हें सार्वजनिक रूप से गले लगाया।
अच्छा।
ये एक बहुत शक्तिशाली संदेश था कि विज्ञान पर आधारित प्रक्रियाओं से हम सुरक्षित रह सकते हैं और डर को करुणा पर हावी नहीं होने देना चाहिए। इस तरह के कामों ने उनकी अमेरिका के डॉक्टर वाली छवि को और मजबूत किया।
और फिर आया 2020, COVID-19। तब वो 79 साल के थे। ज्यादातर लोग इस उम्र में रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं।
हाँ बिल्कुल, और वो अपने करियर की सबसे बड़ी चुनौती के बिल्कुल केंद्र में थे।
स्थिति भी अभूतपूर्व थी।
अभूतपूर्व, एक नया वायरस जो तेजी से फैल रहा था, जिसके बारे में शुरू में बहुत कम पता था, और ये सब हो रहा था एक ऐसे माहौल में जो राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा बटा हुआ था।
हाँ, वो दौड़ तो खैर।
तूने न सिर्फ जो विज्ञान विकसित हो रहा था उसे समझना था और उस पर सलाह देनी थी, बल्कि उसे जनता तक पहुंचाना भी था, और वो भी तब जब वैज्ञानिक तथ्य खुद राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गए थे।
दबाव बहुत रहा होगा,
व्हाइट हाउस का दबाव, मीडिया की लगातार नजर और यहाँ तक कि व्यक्तिगत हमले, जान से मारने की धमकियां, सब कुछ झेलना पड़ा।
बाप रे।
इन सब के बीच उन्होंने कोशिश की कि वो डेटा और सबूतों पर आधारित एक स्थिर, एक तर्कसंगत आवाज बने रहें। ये उनके दशकों के अनुभव की, आप कह सकते हैं, चुनौती परीक्षा थी।
और फिर दिसंबर 2022 में उन्होंने रिटायरमेंट ले ली।
हाँ, 50 साल से ज्यादा की सेवा के बाद। लेकिन उन्होंने साफ कहा कि वो काम करना बंद नहीं कर रहे, बल्कि अब अपनी ऊर्जा वो पढ़ाने में और अगली पीढ़ी के वैज्ञानिकों को मेंटोर करने में लगाएंगे।
इतने लंबे और मतलब उतार चढ़ाव भरे करियर को देखते हुए डॉक्टर फाउची के मूल दर्शन के बारे में क्या कहा जा सकता है? क्या चीज थी जो उन्हें लगातार चलाती रही?
देखिए, उनके काम और उनके लेखन से कुछ मूल सिद्धांत बिल्कुल साफ उभरते हैं। पहला और शायद सबसे अहम है, डेटा का पालन करें।
फॉलो द डेटा।
हाँ, उनका मानना था कि फैसले हमेशा सबसे अच्छे उपलब्ध वैज्ञानिक सबूतों पर आधारित होने चाहिए, न कि किसी विचारधारा या राजनीतिक सुविधा पर। दूसरा, जो इसी से जुड़ा है, वो है विनम्रता के साथ अनिश्चितता को स्वीकारें, मतलब एम्ब्रेस अनसर्टेनिटी विथ ह्यूमिलिटी।
अच्छा।
वो इस बात पर जोर देते हैं कि विज्ञान एक प्रक्रिया है, कोई पत्थर की लकीर नहीं। ये कहना कि मुझे नहीं पता या नए सबूत आने पर अपनी सलाह बदलना, ये कमजोरी नहीं बल्कि वैज्ञानिक ईमानदारी है।
जैसे कोविड के दौरान मास्क पर सलाह बदली थी।
बिल्कुल, वो इसका एक अच्छा उदाहरण है।
और तीसरा सिद्धांत शायद उनकी जेसुइट पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ।
हाँ, वो है रोगी की प्रधानता, द प्राइमेसी ऑफ द पेशेंट। मतलब अंततः उनका सारा काम लोगों की पीड़ा कम करने और जीवन बचाने की इच्छा से प्रेरित रहा है। ये उनके बचपन के फार्मेसी के अनुभवों से लेकर उनके पूरे मेडिकल और रिसर्च करियर तक दिखता है। और प्रेरणा की बात करें तो मुझे लगता है उसमें दो चीजें हैं। एक तो बौद्धिक जिज्ञासा, ये समझना कि वायरस कैसे काम करते हैं।
हाँ।
और दूसरी, सार्वजनिक सेवा के प्रति एक गहरी कर्तव्य भावना। उन्होंने निजी क्षेत्र से कई आकर्षक ऑफर ठुकराए, क्योंकि वो मानते थे कि NIH में उनका काम सिर्फ नौकरी नहीं, एक पब्लिक ट्रस्ट है, एक जिम्मेदारी है।
और उन्होंने आलोचनाओं और हमलों का सामना कैसे किया? उसका कोई खास तरीका था?
हाँ, उनके रवैये में कुछ चीजें ध्यान देने लायक हैं। पहला, वो टकराव से बचते नहीं थे, सीधा सामना करते थे, जैसा हमने लैरी क्रेमर वाले मामले में देखा। दूसरा, उनमें व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को अलग रखने की कमाल की क्षमता थी। वो इसे कंपार्टमेंटलाइजेशन कहते थे।
अच्छा।
मतलब काम के तनाव को निजी जिंदगी पर हावी ना होने देना और अपना ध्यान लक्ष्य पर रखना, ये खासकर कोविड के दौरान जब उन पर इतने व्यक्तिगत हमले हुए तब बहुत काम आया होगा।
और तीसरा?
तीसरा है दृढ़ता, मतलब लगे रहना, चाहे वो एड्स की दवाओं के लिए सालों तक काम करना हो या महामारी के दौरान रोज प्रेस ब्रीफिंग करना हो। वो आसानी से हार मानने वाले नहीं थे।
अगर हम उनके जीवन के तीन सबसे महत्वपूर्ण मोड़ चुने जिन्होंने उनके रास्ते को बिल्कुल बदल दिया, तो वो कौन से होंगे?
अच्छा सवाल है। पहला तो निश्चित रूप से 1981 का वो फैसला होगा, एड्स पर काम करने का।
हाँ, वो तो था ही।
जैसा हमने बात की, उसने उनके करियर की दिशा ही बदल दी। वो एक लैब साइंटिस्ट से एक राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पब्लिक हेल्थ हस्ती बन गए, जिन्हें विज्ञान, नीति, संचार, इस सबके जटिल मिश्रण को साधना था।
ठीक है, दूसरा मोड़ शायद वो एड्स कार्यकर्ता वाला दौर।
हाँ, मैं उसी पर आ रहा था। लैरी क्रेमर और दूसरे कार्यकर्ताओं के साथ वो टकराव और फिर सहयोग का दौर, वो दूसरा बड़ा मोड़ था।
क्यों?
क्योंकि 1980 के दशक के अंत में जो हुआ वो सिर्फ टकराव नहीं था। क्रेमर की तीखी आलोचना के जवाब में वो पीछे हट सकते थे, बचाव कर सकते थे, पर उन्होंने संवाद का रास्ता चुना।
क्यों?
क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि इन कार्यकर्ताओं की आवाज में सच्चाई है, और जो प्रभावित समुदाय हैं उन्हें रिसर्च की प्रक्रिया में शामिल करना नैतिक रूप से भी सही है और वैज्ञानिक रूप से भी बेहतर नतीजे देगा।
और इससे बदलाव क्या आया?
बदलाव ये आया कि NIH में मरीजों की भागीदारी के दरवाजे खुल गए। फाउची रोगी वकालत के एक बड़े हिमायती बन गए। उन्होंने सीखा कि विशेषज्ञता का मतलब ये नहीं कि आप सब जानते हैं, बल्कि ये भी है कि आप दूसरों से सीखने को तैयार हैं।
और तीसरा मोड़ जाहिर है सबसे हाल का।
हाँ बिल्कुल, COVID-19 महामारी, 2020 से 2022 तक का वो दौर, ये उनके लिए एक अभूतपूर्व चुनौती थी। 79 साल की उम्र में एक बिल्कुल नया वायरस, दुनिया भर में दहशत, वैज्ञानिक अनिश्चितता और साथ में चरम राजनीतिक ध्रुवीकरण।
सही।
ये एक मोड़ क्यों था? क्योंकि इसने उनके दशकों के अनुभव, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स और वैज्ञानिक सत्य के प्रति उनकी निष्ठा की, मतलब फाइनल परीक्षा ले ली। इसने ये भी दिखाया कि 21वीं सदी में वैज्ञानिक सलाह देना कितना जटिल हो गया है।
हाँ, खासकर जब सूचना और गलत सूचना इतनी तेजी से फैलती है।
बिल्कुल, और जब पब्लिक हेल्थ के मुद्दे राजनीतिक हथियार बन जाते हैं।
तो डॉक्टर फाउची के जीवन और उनके अनुभवों से हम ऐसे क्या मानवीय सबक सीख सकते हैं जो हमारे लिए भी प्रासंगिक हों?
देखिए, कई महत्वपूर्ण सबक हैं। पहला तो है बौद्धिक विनम्रता का महत्व। ये मानना कि आप सब कुछ नहीं जानते और नए सबूत आने पर अपनी राय बदलने को तैयार रहना, ये सच्ची विशेषज्ञता की पहचान है।
आजकल ये गुण थोड़ा कम देखने को मिलता है।
सही कहा।
और
दूसरा कि अगर आप किसी बड़े उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध हैं, जैसे पब्लिक सर्विस, तो उसमें अक्सर व्यक्तिगत त्याग शामिल होता है, समय का, आराम का, कभी कभी निजी सुरक्षा का भी। फौजी की कहानी दिखाती है कि अगर आपके पास उद्देश्य की भावना है तो ये त्याग सार्थक लग सकते हैं।
और दूसरों के साथ रिश्ते बनाने के बारे में क्या सबक है?
हाँ, वो तीसरा सबक है, रिश्ते बनाने का महत्व, खासकर उन लोगों के साथ जो आपसे असहमत हैं या आपकी आलोचना करते हैं।
जैसे एड्स एक्टिविस्ट्स के साथ हुआ।
बिल्कुल, उनके अनुभव दिखाते हैं कि संवाद और सहानुभूति से टकराव को सहयोग में बदला जा सकता है और अंत में बेहतर नतीजे निकलते हैं।
और कुछ?
हाँ, एक और बात, संकट के समय भी लंबी अवधि की सोच रखना, मतलब तात्कालिक जरूरतें तो पूरी करनी ही हैं, लेकिन साथ ही भविष्य की तैयारी जैसे बेहतर निगरानी सिस्टम, रिसर्च क्षमता, इनमें निवेश करना भी जरूरी है। और आखिर में विशेषज्ञता के साथ जो जिम्मेदारी आती है, सत्ता के सामने सच बोलने का दायित्व, भले ही वो असुविधाजनक हो या अलोकप्रिय हो, इसके लिए नैतिक साहस चाहिए।
तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें और डॉक्टर फाउची के जीवन और उनके संस्मरण ऑन कॉल से तीन मुख्य निष्कर्ष निकालने हो तो वो क्या होंगे? पहला शायद एक भावनात्मक पहलू।
हाँ, भावनात्मक स्तर पर अगर देखें तो जो चीज सबसे ज्यादा छूती है वो है मानवीय पीड़ा के प्रति उनकी गहरी अटूट प्रतिबद्धता। ये सिर्फ कोई किताबी सिद्धांत नहीं था, ये उनके हर काम में झलकता था। चाहे वो 80 के दशक में एड्स के मरीजों की देखभाल हो, या लैरी क्रेमर जैसे आलोचक की जरूरत के समय मदद करना हो, या फिर एबोला संकट में डर कम करने के लिए नर्स को गले लगाना हो, ये करुणा उनके काम की नींव रही है, मुझे लगता है।
दूसरा, कोई बौद्धिक सीख।
बौद्धिक रूप से मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सबक यह है कि विज्ञान कोई मंजिल नहीं बल्कि एक सफर है, एक लगातार विकसित होने वाली प्रक्रिया। अनिश्चितता इसका हिस्सा है और नए सबूतों के आधार पर अपनी सलाह बदलना, जैसे कोविड में मास्क पर हुआ, ये कोई गलती नहीं है बल्कि वैज्ञानिक तरीके का ही हिस्सा है। इस प्रक्रिया को समझना और उस पर भरोसा करना, खासकर संकट के समय, बहुत जरूरी है।
सही। और तीसरा, एक सार्वभौमिक सीख जो हम सबके लिए हो।
सार्वभौमिक स्तर पर मुझे लगता है उनकी कहानी ये दिखाती है कि अगर आप अपने मूल मिशन के प्रति निष्ठावान हैं, चाहे वो पब्लिक सर्विस हो या सच की खोज या कोई और उद्देश्य,
हाँ,
तो ये निष्ठा बाहरी दबावों और व्यक्तिगत हमलों के बावजूद भी आपको न सिर्फ मुश्किल दौर से निकलने में मदद करती है बल्कि एक सार्थक जीवन जीने की शक्ति भी देती है। शायद यही सबसे बड़ा सबक है, अपने मूल्यों पर टिके रहना, खासकर तब जब ऐसा करना सबसे मुश्किल हो।
बिल्कुल, और इसी विचार के साथ आज की ये ज्ञान गोष्ठी समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।